अगली टिप लीजिए, किताबें बेहतरीन साथी हैं। बुक इज़ द बेस्ट कंपेनियन, बुक इज़ द बेस्ट फ्रेंड। वजह इसलिए कि किताबों के मुताले से जहन खुलता है, इबरतें और नसीहतें मिलती हैं और मुताला करने वाले को हिकमत हासिल होती है। इसकी ज़ुबान की गिरा खुलती है। किताबें तफकीर का मलका बढ़ाती है। तफकीर क्या है? फिक्र, गौर व फिक्र, यानी बंदे की मलका कहते हैं कैपेसिटी, यानी किताबों के ज़रिए से बंदे में तफक्कुर पैदा होता है। हकायक रासिख करती है, यानी सच्चाई पसंद हो जाता है बंदा, असर और रसूख आता है उसमें। हाँ, शुबहात का इजाला करती है, यानी बहुत डाउट्स हों तो आप किताब पढ़ें, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अकेले आदमी की मुअन्निस होती है, मुअन्निस उनसे, यानी उससे प्यार करने वाली, उसकी तन्हाई को बांटने वाली। और दिल से सरगोशियाँ करती हैं। किताबें पढ़िए, बाद में दिल में वही जुमले आते रहेंगे। और सबसे बढ़ के शब बेदारों से बातें करती हैं। अगर इस किताब को आप अल किताब कह दें ना, तो ये सारे जुमले और भी खूबसूरत महसूस होंगे। और ये कुरान जो आपके मेरे हाथ में रहता है, इससे बेहतर किताब और क्या होगी? हकीकत में ये किताब ही हमारे दिल को खुश रखती है। गौर करने वाले के लिए वजह लुत्फ और रात के मुसाफिर के लिए चिरागे राह होती है। मालूमात के दफ्तर को जितनी बार भी दोहराया जाएगा, इसकी छान फटक होगी, इतना ही वो बरगो बार लाएगी, यानी पत्ते भी आएंगे, फल भी आएगा। जो खबर दी गई है वो पूरी होगी। मुतालिया न करने और किताबें छोड़ देने से ज़ुबान बंद होती है, तबीयत पर रोक लगती है, दिल में जमूत तारी होता है, अक़ल में फतूर आता है और फितरत की मौत होती है। मालूमात का ज़खीरा सुकड़ जाने से फ़िक्र के सूते खुश्क हो जाते हैं। किताब में सआदत है, ज़रबुल मिसल और कहावत और कोई लतीफ़ नुक्ता, कोई हकायत है, यानी किताबें मुख्तलिफ फ़ायदे देती हैं। मुताले के बहुत से फ़वाद भी हैं। अदम मुताले, यानी मुताले ना करने से फतूर हिम्मत, मतलब कि हिम्मत टूट जाती है, बिखर जाता है, बंदा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। अजीमत में कमी आती है, यानी अज़्म के साथ नहीं जीता। और रूह की मुर्दगी होती है, यानी रूह मुर्दा होने लगती है, और ये बहुत बड़ी मुसीबत है। और अफसोस की बात बताऊं, अब किताबों की ज़रूरत नहीं रही। सुनने को लोग पसंद करते हैं और किताब बेहतरीन साथी है। पहले आप देखिए, अक्सर लोग फारिग वक्त में किताबें पढ़ते थे। चलिए, बहुत सारे लोग रिसाले भी पढ़ते थे, कोई अच्छी चीज़ ले ही लेते होंगे ना, नावल, डाइजेस्ट, फिक्शन। लेकिन अब किताब का रिवाज घटता ही जा रहा है। एक वक्त आएगा, देखिएगा, ये सफ़ा नापैद होगा। लोग कहा करेंगे, कभी हमारे बाप दादा दो दो किलो की किताबें ले लेके फिरते थे, शिप कराते थे, कैसे आज किताब सिमट कर एक चिप में आ गई, एक क्लिक पे हंड्रेड्स पेजेस की बुक आपके हाथ में है। बड़ा करे बड़ी हो जाए, छोटा करे छोटी कर दे, जिस तरह भी पढ़िए लेकिन किताब पढ़िए। सवाल ये कि मुतालिया तर्क करने के नुकसान क्या हैं? तो पहली बात यह कि ज़खीरा अल्फाज कम होता है। ज़ाहिर है, जो बहुत रीड करेगा ना, तो उसकी ज़ुबान बहुत साफ़ होती जाएगी ना। एक ही लफ्ज़ के लिए कितने लफ्ज़ आएंगे उसके दिमाग पे? अब जो पढ़ता ही नहीं, उसकी ज़ुबान पे एक लफ्ज़ पूरा नहीं आएगा। सीन और स्वाद का फ़र्क तक कभी कभी भूल जाता है, क्योंकि देखी नहीं होती ना कोई चीज़, लिखी भी तो फिर बोलनी भी नहीं आती। फिर इस तरह मालूमात महदूद होती हैं, गोया कि इंसान कम इल्मी का शिकार हो जाएगा। फिर नसीहतों से महरूमी होगी, मुराजे के दूसरों की गलतियां दोहराएगा, दिल में जमूद आएगा, सोचे गमों में डूबी रहेंगी और गौर व फिक्र की सलाहियत कम होगी। तो नतीजा क्या होगा कि हिकमत की कमी होगी और लघवियात में मशगूलियत होगी, तो गुनाहों का इस्तेमाल होगा। आज आप देखिए ना, वीडियो, ऑडियो, चिट चैट, स्नैपचैट, हाँ, बुक तो एक ही जगह रह गई और वो फेस पे आ गई, यानी अब किताब भी किताब ना रही, उधर भी लोग ही हैं। और ख़ास तौर पे किताबों में जब मुताले कुरान हो, तो गमों से तवज्जो हटाने का बेहतरीन जरिया। जब कभी दुखी हो, सैड हो, उदास हो, कुरान खोल लीजिए। तर्जुमा आता है ना, तो बस ऐसे लगेगा बेस्ट फ्रेंड से कॉल मिल गई, जिससे आप दिल की बातें करते हैं और जो आपके दिल की बातें जान लेती है। और अल्लामा इकबाल ने कहा, मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा, मैं गड़ गया ज़मीन में कुरान कहते कहते। यानी वो किताब जो कम ही पढ़ी जाती है और उस पर गर्द आ जाती है, वो कुरान है। ये इतने साल पहले कह गए तो आज के क्या हालात होंगे, और आज तो कुरान एक क्लिक पे हमारे हाथों में। तो इस किताब के साथ साथ एक और किताब पढ़िए, वो है किताबे कायनात। कायनात के अजायबो गरायब पढ़िए, अजायबात आलम का नज़ारा कीजिए, इससे नफ्स को तस्कीन मिलेगी और आपके गम और फिक्र ख़त्म हो जाएंगे। बुखारी मुस्लिम में जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, कहते हैं कि हमें अबू उबैदा की कमान में रसूलुल्लाह ने रवाना फरमाया। मकसद कुरैश के काफ़िले का पीछा था, ज़ादे राह में खजूर की एक थैली थी। अबू उबैदा इसी में से एक एक खजूर हमें देते थे, एक खजूर देते थे अमीरे लश्कर इनको। रावी ने जाबिर से सवाल किया कि इससे कैसे काम चलाते थे, यानी एक खजूर उसे पेट भरता होगा। तो जवाब सुनिए, कहते हैं कि हम इसे बच्चों की तरह चूसते थे, फिर ऊपर से पानी पी लेते तो वो पूरे दिन के लिए काफ़ी होता, रात गए तक। हम डंडों से दरख्तों के पत्ते झाड़ते, इनको तर करते यानी गीला करते और फिर खा लेते। अल्लाह अकबर। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे जाकर कहा कि हम साहिल के किनारे चले तो क्या देखते हैं कि एक बड़े टीले की मानित कोई चीज़ है। इसके पास पहुँचे तो मालूम हुआ कि वो तो व्हेल मछली है। कहते हैं कि अबू उबैदा ने उसे देख कर कहा, यह तो मुर्दा है। फिर फरमाया, नहीं, हम अल्लाह के रास्ते में भेजे हुए हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले हैं और इस तरार की हालत में है, लिहाजा इसे खा लो। वैसे भी सी फूड था, अगर उसको ज़िबा ना भी किया तो खा तो सकते ही हैं, यही इशारा था। खैर, जाबिर कहते कि हम 300 आदमी एक महीने तक इसके पास मुकीम रहे। ज़रा सोचिए, 30 दिन तक 300 आदमी, 900 मील्स कह लीजिए, हैं, और इसमें से खाते रहे हत्ता के मोटे हो गए। जाबिर कहते हैं हम इसकी आँख के अंदर से चुल्लू भर भर कर लेते, यानी आँख की अंदरून जो होती है ना, जो एक उसका स्केल्टन्स है, उसके अंदर से चुल्लू भर भर कर निकालते और इसकी चिकनाई बड़े बड़े घड़ों में भर लेते, इसके टुकड़े काटते जो बैल के बराबर होते थे। सोचिए वो कितनी बड़ी व्हेल मछली होगी। अबू उबैदा ने हम में से 13 आदमियों को इसकी आँख के हलके में बिठाया, यानी इतना बड़ा वो एक आर्च बना हुआ था कि 13 लोग उसमें बैठ गए। इसकी एक पसली खड़ी की, सबसे बड़े ऊँट पर सबसे लंबे आदमी को बिठाकर इसके नीचे से निकाला, तो वो भी इसके नीचे से निकल गए। इमेजिन करें, ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ था। इसके गोश्त के कुछ टुकड़े हम लेकर आए और जब मदीना आए तो इसका ज़िक्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आपने फरमाया, ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा रिस्क था, और किनको मिला, जो अल्लाह के रस्तों में निकले। फिर फरमाया, इसका कुछ गोश्त लेकर आए हो। जाबिर कहते हैं, हमने रसूलुल्लाह को भी इसका गोश्त भेजा, आपने इससे खाया। तो ये है वो बात जिसको अल्लाह ताला सूरह ताहा आयत 50 में फरमाते हैं, वही ज़ात है जिसने हर चीज़ को इसकी सूरत अता की फिर हिदायत दी। अल्लाह के रस्तों में आप देखिए इस तरह से मिलता है, ये मुराद है। अबू दाऊद ने अपनी सुनन में बाब ज़कात ज़ुरा में लिखा, मिस्र में एक ककड़ी, ककड़ी समझते हैं आप, खीरा टाइप चीज़, एक ककड़ी मैंने 13 बालिश्त की नापी। अल्लाह अकबर, कितनी लंबी होगी, 13 बालिश्त। और एक ऊंट पर लदा तरंज देखा जिसके काट कर दो टुकड़े किए गए। तो वही ज़ात है जिसने हर चीज़ को इसकी सूरत अता की फिर रास्ता बताए। मतलब ये कि खाना पकाते हुए सब्ज़ी पे गौर किया करें, फ्रूट चाट बनाते हुए फल पे गौर करें, ये कायनात पे गौर है। डॉक्टर ज़ग़लूल नज्जार, जिन्होंने आयात कौनिया यानी कायनात यूनिवर्स की निशानियों का मुतालिया किया है, उन्होंने अपने एक लेक्चर में कहा कि बहुत से सितारे ऐसे हैं जो रोशनी की रफ़्तार से हज़ारों साल से ज़मीन की तरफ चल रहे हैं और अभी तक यहाँ नहीं पहुँच सके, इनके सिर्फ मवाक़े ही रह गए, क्योंकि बस नहीं मैं कसम खाता हूँ सितारों के मवाक़े की। यानी मुराद है कि कायनात बहुत बड़ी है, बड़ी बड़ी गलेक्सीज़ हैं, और वही ज़ात है जिसने हर चीज़ को सूरत दी फिर रास्ता बताया, यानी सितारों को चलना और पहाड़ों को खड़ा होना उस ज़ात ने सिखाया। और इसी तरह एक जरीदा है जिसकी शेख सुर्खी थी कि आज ओना का पेरिस में फातिहों की तरह दाखला हुआ जिसे दसियों पैदल और सवार पुलिस वाले जलू में लिए हुए थे। ये अतना दरियाए नरवीक से निकली एक मछली थी जो हनूत शुदा थी, यानी जैसे डेड बॉडीज को सेव कर लिया जाता है, तो ये एक ऐसी मछली थी जिसको हनूत कर दिया गया था, प्रिजर्व्ड थी वो। इसका वजन 8,000 किलोग्राम था। एक बहुत बड़ी गाड़ी पर 10 बड़े घड़े रखे गए थे जिनमें इसे रखा गया। इस मछली की 1 माह तक नुमाइश होगी, लोगों को इसकी ओछ में दाखिल होने की इजाज़त होगी जिसे बिजली से रोशन किया गया, यानी उसका मैदा इतना बड़ा था कि लोग उसके अंदर दाखिल हो सकते थे। इसके पेट में बयक वक्त 10 आदमी दाखिल हो सकते थे, लेकिन ओना की नुमाइश के मुंतजमीन यानी मैनेजमेंट के लोग और पुलिस में जाए नुमाइश पर इत्तेफाक ना हो सका। ग्राउंड रेल के स्टेशन पर इसे इस खौफ से नहीं रखा जा सका कि कहीं बोझ से सड़क टूट ना जाए। ये मछली सिर्फ 18 महीने की है, फिर भी इसका तूल 20 मीटर है। ये नॉर्वे से गुज़श्ता साल सितंबर में पकड़ी गई थी। इसकी नुमाइश पूरे यूरोप में करने के लिए एक रेल का डब्बा ख़ास किया गया था, जिस पर रखी गई तो वो टूट गया। फिर एक ख़ास 30 मीटर लंबा ट्रक इसके लिए बनाया गया। तो वही तो ज़ात है कि जिसने हर चीज़ को सूरत दी भी रास्ता बनाया। कभी गौर करें तो इन चीज़ों पे बंदा सटपटा जाता है। सिर्फ आसमान पे फैले हुए बादलों को देखकर बंदा कहता है, अल्लाह आपने ये कैसे बनाए, ये क्या चीज़ है। और इसके बरक्स देखिए चींटी, गर्मी से जाड़े तक की रोज़ी जमा कर लेती है। किसने सिखाया इसको कि सर्दियां आने वाली हैं इसलिए अपनी बिल में आटा डालो, क्योंकि सर्दियों में वो बाहर नहीं निकलती। जब दाने में कोमपल निकलने का डर होता है तो इसे 2 टुकड़े कर देती है वो ज़ात। कभी इन चीज़ों पे गौर किया करें तो आप कहेंगे अमेज्ड बाय अल्लाह सुब्हान तआला। एक सीरीज़ हमारी चल रही है अमेज्ड बाय अल्लाह तआला, असमाल हुस्ना की। हर नाम पढ़ाते वक्त मुझे ऐसे ही महसूस होता है, अल्लाह मैं आज फिर आपसे इम्प्रेस हो गई, आई एम अमेज्ड रियली। कायनात के चारों तरफ, दूर तो जाने की ज़रूरत नहीं हमारे, आपके इर्द गिर्द सिर्फ हमारे डोर स्टेप पे आपको अल्लाह की कितनी निशानियाँ मिल जाती हैं। सहरा में सांप को जब ग़िज़ा नहीं मिलती तो वह अपने आप को लकड़ी की तरह नसब कर लेता है, जिस पर परिंदा आकर बैठ जाता है तो इसे खा लेता है। अल्लाह होगा, किसने सांप को ये तरीका सिखाया? वही ज़ात जिसने हर चीज़ को सूरत दी और रास्ता बताया। अब्दुल रज़्ज़ाक अल सनानी फरमाते हैं, मैंने मोमर बिन राशिद अल बसरी को कहते सुना कि मैंने यमन में अंगूर का एक गुच्छा देखा जिसका वज़न एक गधे के बराबर था। आपने मैंने कभी इतने बड़े गुच्छे और अंगूरों के खाए देखे नहीं। और अल्लाह सच फरमाता है कि ऊंचे ऊंचे खजूर के पेड़ बनाए जिनमें पके फल लदे हैं। तमाम दरख्तों और नबातात को एक ही पानी दिया जाता है, सूरत रात में ये बात आती है, लेकिन खाने में हमने एक को एक पर फजीलत दी। क्या ऑरेंज के पीछे ऑरेंज जूस था? आप देखिए करेले भी उसी मिट्टी में से निकलते हैं, मीठे आम भी उसी में से निकलते हैं। बास खुद मजबूत होते हैं, बास की हिफाजत कांटा करता है, बास सख्त खट्टे और तुर्श होते हैं, क्योंकि हुवल्लज़ी वही ज़ात है जिसने हर चीज़ को सूरत दी और रास्ता दिखाया। कमालुद्दीन अद्दफ़ी अल मिस्री अपनी किताब में लिखते हैं, किताब का नाम है अल तौले सईदुल जामे नजबाव इब्नाओ सईद। कहते हैं कि मैंने एक खोशा अंगूर देखा जिसका वज़न 8 लेसी रत्तल था। इसके एक दाने का वज़न हमारे शहर अदफोके 10 दिरहमों के बराबर निकला। अल्लाह अकबर, वही है जिसने हर चीज़ को सूरत दी और रास्ता दिखाया। माहरीन फलकियात कहते हैं कि कायनात आहिस्ता आहिस्ता वसी हो रही है जैसे रबड़ फैलता है, और आसमान हमने बनाया, हम ही इसे वसत देने वाले, जिन नामूसिउन का लफ्ज़ है। और इनका ये भी कहना है कि खुश्की घट रही है और समंदर फैल रहे हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम ज़मीन को इसके अतराफ़ से घटाते चले आ रहे हैं? वही है जिसने हर चीज़ को सूरत दी और रास्ता दिखाया। इसी तरह मुजल्ला फैसल के एक शुमारे में लिखा है, एक रतालू फल की तस्वीर शाया हुई जिसका वज़न खौल के साथ 22 यानी 22 किलोग्राम था। इसका कुतर यानी रेडियस 1 मीटर था। एक सूखी प्याज की तस्वीर भी थी जिसका वज़न 3.2 किलोग्राम था। इसका रेडियस यानी कुतर 30 सेंटीमीटर था। इसके बाद इस रिसाले वाले ने लिखा कि एक टमाटर का तूल और लरस यानी लंबाई और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा निकला। ये सब चीज़ें कौन बनाता है? और ये कि ये गैर मामूली अशिया मैक्सिको के एक किसान जोसेफ कारमन के खेत में पैदा हुई। जोसेफ को ज़रात और ज़मीन पर काम का तवील तजुर्बा है, जिसकी वजह से वो मैक्सिको में फर्स्ट फार्मर करार दिया गया। वही है जिसने हर चीज़ को सूरत दी और रास्ता दिखाया। और अगर अपने सर पे देखिए तो सर में चार रकीक मादे हैं, यानी सॉल्यूशंस हैं। हमारे सर के अंदर चार ऐसे लिक्विड्स हैं, मुंह में मीठा जिसे खाना पीना हलक से उतरता है, नाक में लेसदार जिससे गर्दो गुबार रुक जाती है, आँख में नमकीन जो आँख को खुश्की से रोकती है, और कानों में कड़वा जो कीड़ों को इसमें जाने नहीं देता। दिल चाह रहा कहने को फतह बारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। आप देखिए, अगर थूक कड़वा होता, अगर नाक में ये लेस ख़त्म कर दीजिए, सारे जरासीम नाक के रास्ते पूरे जिस्म में जाए, चंद घंटों में बंदा ख़त्म हो जाए। ये अल्लाह ने लिक्विड्स डाल दिए। कभी तो इन बातों पर इंसान गौर करे, फिर अकल झुकती है, फिर आँख रोती है। और अल्लाह फरमाते वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरुन, तुम्हारे तो अपने नफ्सों में निशानी है, क्या तुम देखते नहीं हो। इसी तरह एक मौरख है अबुल फजल, वह अपनी किताब अल खवादिसुल जामिया वल तजारिबुन नाफियतु फिल मियतु साबिया में, यानी 637 के हालात लिखते हैं, और कहते हैं कि इस साल अमीर जमालुद्दीन कस्टमर की खिदमत में एक आजमी दर्जी था। कस्टमर कहते हैं कपड़ा बेचने वाले को। इसने अपनी कैंची से एक पड़ोसी को ज़ख्मी कर दिया जो मर गया। यह दर्जी बेहतरीन फनकार था, इसने कई अजीबो गरीब चीज़ें बनाई थी। इसने अपने आप को एक संदूक में बंद कर दिया। इसके पास बग़ैर कटिंग का कपड़ा था। संदूक शुरू रात में जमालुद्दीन कस्टमर के दरवाज़े के पास लटका दिया गया। फिर सुबह के वक्त संदूक नीचे रखा गया और इसे खोला गया तो लोगों ने देखा कि इसने कपड़े की कटिंग कर दी है और कपड़ा सी कर लपेट दिया है। यानी इतना एक्सपर्ट था कि एक संदूक के अंदर भी अपना काम करता रहा। इसके बाद और लोगों ने भी ऐसा करना चाहा, लेकिन ना कर सके। ये दर्जी बूढ़ा पस्त कद और लंगड़ा था, लेकिन अपने पेशे में बेनज़ीर था। तभी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो जानता ना था। आप में आज जो करते हैं क्या माँ के पेट से करता हुआ सीख गया है? और अल्लाह फरमाते अल्लाह ने तुम्हें माओं के पेटों से निकाला, तुम कुछ ना जानते थे। इसने तुम्हें कान आँख और दिल दिए, और हमने इंसान को सिखाया कपड़े बुनना और बनाना, बल्कि उन्होंने झुटलाया इसको जिसे जानते ना थे और जिसके मफहूम से नाशना थे। तो इन सारी चीज़ों में इंसान को अल्लाह ताला का प्यार दिखता है। और शायर कहते हैं कि इस शख्स से जो हमदानी का दावा करता है, यानी जो कहते हैं मुझे सब कुछ पता है, हमा कहते हैं कुल ऑल और दानी मीन जानता हूँ दानम, उससे कहो तुम बहुत कम जानते हो, ज़्यादा चीज़ों के बारे में नावाकिफ़ ही हो। यानी लोग ये दावे करें तो ये दावे झूठे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं हम इन्हें अपनी जो भी निशानी दिखाते हैं वो पहली निशानी से बड़ी भी होती है। जी सूरह दुखान है गालिबन। इसी तरह शेख शहाबुद्दीन अहमद बिन अदरीस अल कराफी अल मिस्री कहते हैं मुझे मालूम हुआ कि अल मलकुल कामिल के लिए पीतल का एक शमादान बनवाया गया जिसमें रोशनी के लिए कई मुकामात हैं, समझिए कैंडल स्टैंड। जब भी रात का एक घंटा होता एक मुकाम खुलता और एक आदमी घंटी बजाता, और जब 10 घंटे गुजर जाते तो शम्मा के ऊपरी हिस्से में से एक आदमी निकलता और कहता अल्लाह ताला सुल्तान की सुबह बखैर व आफियत करे। इससे सुल्तान को पता चलता था कि फजर का टाइम हो गया। कराफी कहते हैं मैंने भी ये शमादान बनाया और इसमें ये इजाफा कर दिया कि हर घंटे में शम्मा का रंग बदल जाता है। इसमें एक शेर होता जिसकी आंखें शदीद स्याह होती, फिर शदीद सफ़ैद, फिर शदीद सुर्ख, हर घंटे का अलग रंग होता। दो परिंदे कंकरी गिराते, एक शख्स दाखिल होता एक निकलता, एक दरवाज़ा बंद होता दूसरा खुलता। जब फजर का वक्त हो जाता एक शख्स शमादान के ऊपरी हिस्से में आता, उंगली अपने कान पर रख कर ये बताता कि अजान हो गई है, लेकिन मुझसे ये ना हो सका कि वो कलाम भी करे। फिर मैंने एक जानवर की तस्वीर बनाई जो चलता और दाएं बाएं मुड़ता, सीटी बजाता लेकिन बोलता नहीं। यानी लोगों ने अपने अपने फ़न को पेश किया। वही है जिसने हर चीज़ को एक सूरत दी फिर रास्ता दिखाया। और शायर कहता है कि जुदत यानी नयापन, अक़ल ही ये बताती है कि अक़ल का पैदा करने वाला पाक बरतर और मुजद अकबर है। اس کی تخلیق میں عبرتیں. مطلب یہ کہ اللہ نے انسان کو جو سکلز دی ہیں اگر ان سب کو پا کر اللہ تک نہ پہنچا تو پھر بیکار ہے اس کا علم. قلب کو اللہ کی مخالفت سے ہی وحشت ہوتی ہے. حسن بصری فرماتے ہیں، اے ابن آدم، موسیٰ علیہ السلام نے خضر کی 3 بار مخالفت کی تو انہوں نے کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، اب تمہارا میرا ساتھ نہیں رہ سکتا، اور تم رب تعالیٰ کی مخالفت روزانہ بارہا کرتے ہو، کیا تمہیں یہ ڈر نہیں کہ اللہ بھی یہ فرمائے کہ اب میرا تمہارا ساتھ نہیں رہا؟ سوچیے کتنا زبردست جملہ کہ 3 بار خضر نے موسیٰ کی بات کے بعد کہہ دیا کہ اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو اگر اللہ کی مخالفت ہم 13 دفعہ کریں دن میں، تو اگر ایک دفعہ اللہ کہہ دے انک لن تستطیع معی صبرا اور ھذا فراق بینی و بینک، تو بات یہی ہے کہ ہم سب کو سوچنا ہے. آپ دیکھیے کہ کتنا کچھ پڑھا ہم نے کتاب کائنات میں، سبزیوں سے لے کے پھلوں سے لے کر چیزوں میں. تو بات یہ کہ قرآن اللہ کا قول ہے، کائنات اس کا فعل ہے، اور اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں. قرآن پاک کی آیتیں نوٹ کیجئے جس میں غور و فکر کی بات ہے. سورۃ رعد آیت 3 ہے، جس میں زمین کے پھیلانے اور پہاڑوں کے کھونٹے گاڑنے اور دریاؤں کے بہائے جانے کا ذکر ہے، اور پھلوں کے جوڑے اور رات دن کو تاری کرنے کی بات ہے. اسی طرح سورۃ مومنون آیت 14 میں انفس کی نشانی ہے، یعنی انسان کے اپنے اندر جو چکیاں چل رہی ہیں. ایک چھوٹی سی پانی کی بوند لوتھڑے کی شکل میں ڈھلتی ہے، پھر بوٹی اور بوٹی پہ ہڈیاں اور ہڈیوں پہ گوشت، اور پھر اللہ کہتے ہیں ہم اس کو ایک نئی مخلوق میں بنا دیتے ہیں، یعنی بچہ. پھر ذرا سورۃ قاف کی آیت 6 دیکھیے، اللہ آسمانوں پہ غور و فکر کرواتے ہیں کہ دیکھو ذرا کبھی ہم نے کیسے بنایا اس آسمان کو، اس میں کوئی رکھنا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. اور سورۃ ملک آیت 3، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ ہی بابرکت ہے جو بہترین پیدا کرنے والا ہے. مطلب کیا ہے کہ تم رحمان کی تخلیق میں بے ربطگی نہ پاؤ گے. تو آپ کو مجھے اس کو پڑھ کر یہی کہنا ہے کہ یا اللہ یا اللہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. قرآن پاک کی چند آیات نوٹ کیجئے جس میں اللہ کو پکارنے کا ذکر ہے. کہہ دو کہ اللہ تمہیں اس مصیبت سے ہر ایک تکلیف سے نجات دیتا ہے. الیس اللہ بھی کافی نبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کہہ دو کون ہے جو تمہیں بر و باہر کی ظلمتوں سے نجات دلاتا ہے؟ ہم ان لوگوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں جن کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا، یعنی بنی اسرائیل. آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، پھر اس کے رب نے اس کو منتخب کیا، اس کی توبہ قبول کی، اسے ہدایت دی. اور نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سورۃ الانبیاء میں کیا فرماتے ہیں، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا ہے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا. اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، جلد ہی اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے گا، سورۃ یوسف 83. اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اس نے میرے ساتھ کرم فرمایا جب مجھے جیل سے نکالا اور تم کو دیہات سے یہاں لے آیا، معروف دعا جو حضرت یوسف نے اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں مانگی تھی اور اپنے بھائیوں کو شرمندہ ہونے سے بچا لیا. اور حضرت داؤد کے بارے میں فرمایا، بس ہم نے اس کی وہ غلطی معاف کر دی اور ان کے لیے ہماری قرابت اور بہترین ٹھکانہ، ایک اجتہادی غلطی ہوتے ہوتے بچ گئی. اسی طرح ایوب علیہ السلام کے متعلق سورۃ انبیاء آیت 84 فرمایا، ان کو جو تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی. بڑی بڑی بیماریاں اللہ دور کر دیتا ہے، اس کے لیے کیا یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی. اور حضرت یونس کے بارے میں سورۃ انبیاء 88 میں کیا فرمایا، ہم نے ان کو غم سے نجات دی. اور آگے کیا کہا، وہ کذالک ننجی المؤمنین، اور وہ کون سی دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا، بس ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی. جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا، اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اللہ اس کی مدد کے لیے موجود ہے، یعنی نہ کرو، اس کا ساتھ نہ دو، اللہ تو نبی کے ساتھ ہے. کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہ دی، الم یجد کا یتیمن فآوا، اور منزل نہ آشنا دیکھ کر راستہ نہ دکھایا، عیال دار دیکھ کر غنی نہ کر دیا. और अल्लाह सूरत अर्रहमान में अपने बारे में क्या फरमाते हैं, आयत 29, कुल यौमिन हुवा फी शान, हर दिन उसकी एक नई शान होती है, एक नया काम है उसके पास। बस लोगों के नज़दीक इसका मफहूम यह है कि वो रोज़ गुनाह माफ़ करता, तकलीफ़ दूर फरमाता और कुछ लोगों को उठाता और कुछ को गिराता है। इसी तरह मुसीबत और बहरान तो कितना ही शदीद हो जाए, अब तेरा अंधेरा छटा चाहता है और सुबह निकलने वाली है, बदली जल्द ही साफ़ होगी। तो कभी भी बड़ी से बड़ी तकलीफ़ आए तो यही कहा करें कि अभी बादल हटेंगे और पीछे से चमकता हुआ सूरज निकलेगा, और अल्लाह के अलावा इसे खोल देने वाला कोई नहीं। वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू, और एक जगह अल्लाह हुआ तो क्या पता चला कि अल्लाह गम दे, अल्लाह ही गम खोलता है। तो क्या कहिए, या अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह। अब देखिए कि हमने देखा कि अल्लाह ने अम्बिया कराम की मदद की, कौमों की मदद की, साहबा कराम की मदद की, और आज भी अल्लाह मोमिनों की मदद फरमाता है, काफिरों से भी दुनिया की नेमतें नहीं छीनता। और अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, सूरह बकरा 1214, के बेशक अल्लाह की मदद मोमिनों के बहुत करीब है। तो अल्लाह की मदद कैसे आती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सही बुखारी 1035, मुझे पुरवा हवा के ज़रिए मदद पहुंचाई गई और कौम आद पछवा के ज़रिए हलाक कर दी गई, यानी मुख्तलिफ जंगों में जो अल्लाह के नबी की मदद की गई थी, ख़ास तौर पर गज़वा खंदक की तरफ इशारा है कि तेज़ आंधियाँ चली थी जिससे दुश्मनों की हांडियाँ उलट गईं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसे पिछली कौमें कौम आद पे भी हवाएं छुटी थी, इसी तरह अल्लाह ने मेरी मदद भी हवाओं के ज़रिए की। तो फिर हमने आज क्या सीखा, पहली बात है कि ज़िंदगी की नेमत बाकी हो तो मौके हज़ार हैं। आज ज़िंदगी ख़त्म हो, आपके पास कल यहाँ आने का बैठने का मौका नहीं रहेगा। जो आज मौके का फ़ायदा उठा लेता है, अल्लाह उसको कल भी मौका दे सकता है। फिर इसी तरह अपनी दीन और दुनिया की सलाहियतें बढ़ानी है इंशाल्लाह, मुताले कुतब में मसरूफ़ रहकर गमों को भुलाना है, और अल्लाह ताला की कायनात पे गौर व फिक्र गमों को दूर करता है, और अल्लाह की मदद की उम्मीद और यकीन रखना है ताकि हमें अल्लाह ताला की पूरी मदद मिले और ज़िंदगी के दुख गम तकलीफ़ें भी दूर हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें उस पर नज़रें लगाने वाला बना ले। जज़ाकल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।